જયપુરમાં તારીખ 4/12/81 સમયસર ગાથા 69-70 ઉપર પૂજ્ય ભાઈશ્રી નું પ્રવચન.
उसको प्रतिभा जोड़ा क्रिया को ज्ञान में देखकर मैं करने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ. उसको नहीं पकड़ा और राग को पकड़ लिया दृष्टि में. राग मेरा है ने राग का मैं करता हूँ, गुरुदा जी का मैं करता हूँ. वो ज्ञान भवन व्यापार प्रवृत्ति से फिर जो क्रियमान रूप से अंतरंग में उत्पन्न होते हुए क्रियमान नीचे फुटनोट है किया जाता वह, जो किया जाता वह उसका नाम क्रियमान है कार्य. प्रतिभास होते ऐसे कृता जी के उस कर्ता के कर्म है. कर्म अर्थात कार्य. कर्म का अर्थ हुआ जड़ कर्म, नो कर्म नहीं लेना. कर्म का अर्थ गुरुदादी जो भाव कर्म है वो कार्य है. विभाव भाव अज्ञान जीव का कार्य होता है. ज्ञानी का कार्य ज्ञान है, अज्ञानी का कार्य अज्ञान में क्रोधादी भाव है. उसको मेरा कर्म में करता ऐसी करता कर्म की प्रवृत्ति चालू है. इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से लास्ट की लाइन है, पन्ना है 127 छेली लिखी लाइन. इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से दर्शन मौका उदय से के चारित्र मौका मौका उदय से नहीं, अनादिकाल से अपना अज्ञान से खुदे गुरु को शास्त्र उसमें कारण नहीं है. कर्म का उदय कारण नहीं, अपना जो शुद्धात्म स्वभाव जो सामान्य स्वभाव ज्ञान स्वभाव अवस्थित है. अनादि अनंत द्रव्य दृष्टि से देखो तो आत्मा अकर्ता होते छते भी होने पर भी वो अपना अधिकारी क्या है मैं को दृष्टि में ले लेता है. तो दृष्टि राग पर पड़ी है अनादिकाल, तो अपने अज्ञान से इस प्रकार अनादिकाल से कालीन अज्ञान से होने वाली यह आत्मा की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है. आत्मा अनादि काल से अज्ञान भाव से मैं करता अनिक्रोधादी मेरा कर्म, मगर अज्ञान का कारण क्या है? अपने आत्मा का स्वभाव को अकर्ता होते होने पर भी क्रोधादी मेरा कर्म ने मैं कर्ता दृष्टि विपरीत हो गई है. मैं ज्ञाता हूँ वो भूल गया. जैसे चक्षु चक्षु कारक अवेदक है, चक्षु कोई कार्य करता नहीं है. दूर रहकर मात्र देखते देखने वाला स्वभाव है, मात्र देखना. कथन चीज देखना ने कथन चीज करना वो चक्षु में लागू पड़ता नहीं है. ऐसे भगवान ज्ञानानंद परमात्मा को अपराधी जो कार्य होता है भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म इससे भिन्न है, इसलिए उसका करने वाला नहीं है। आत्मा को जानते जानते जानने वाला है मगर करने वाला नहीं है, मगर भूल गया अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूलकर अनादिकाल से कोई अज्ञान अपना जैसा त्रिकाली सामान एक रूप स्वभाव है उसको भूल जाना उसका नाम अज्ञान है। नौ तत्व का नाम नहीं आता है इसका नाम अज्ञान नहीं है। अज्ञान की क्या व्याख्या? कि जैसा अपना नानारूप स्वभाव ज्ञायक स्वभाव है उसको नहीं जानना अर्थात उसको विपरीत जानना मानना तो ज्ञायक ज्ञाता अकर्ता, ज्ञायक ज्ञाता अकर्ता। स्वभाव तो सबका ऐसा है होने पर भी अपना जैसा स्वभाव है उसको जैसा है ऐसा नहीं जानना और उसको विपरीत जानना ने मानना उसका नाम अज्ञान है। अपने को आप भूल के हैरान हो गया ये स्वरूप से मिजा बिना पायमो दुख अनंत अपना जो शुद्ध आत्म स्वरूप स्वभाव है उसको भूल जाना उसका नाम ही अज्ञान है। वो अज्ञान से यह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का बोल ज्ञान है और अज्ञान का कारण अपना जैसा शुद्ध आत्म स्वभाव जैसा है उसको नहीं पिछानना नहीं जानना नहीं अनुभव में लेना नहीं लक्ष्य में लेना नहीं आश्रय करना उसका नाम अज्ञान है। तो जहां तक अज्ञान है तहां तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चालू रहती है। इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण बार बार अज्ञान 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 देते हैं। कर्म का उद्देश्य नहीं राव जी भाई, आज तक कोई भी जीव अज्ञान कर्म का उद्देश्य दुखी हुआ ही नहीं। कर्म का उद्देश्य कोई जीव दुखी हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं कभी। दुखी होता है तो अपना ज्ञान से होता है और सुखी होता है तो अपना आत्मज्ञान से होता है। वो तो बाह्य पदार्थ निमित्त मात्र है, करता नहीं है। इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोधादि में प्रवर्तमान इस आत्मा के क्रोध में प्रवृत्त होता है। क्रोध मेरा है मैं उसका करता हूँ, क्रोध मेरा कर्म है। समय समय पर वो आत्मा का स्वभाव को भूलकर एक ही समय और दृष्टि बहिर्मुख होने से परिणाम पर दृष्टि होने से इधर तो कर्म नो कर्म को याद ही नहीं किया, क्योंकि जड़ द्रव्य कर्म और नो कर्म का कर्ता बन सकता ही नहीं। अज्ञान भाव से भी आठ जड़ कर्म ज्ञानावरण आदि और शरीर आदि नो कर्म उसका कर्ता बन सकता ही नहीं। पर्याय दृष्टि से कर्ता बने वो भी विशेष में, सामान्य में तो नहीं। મર્યાદા કરતા કર્મ આત્મા કરતા બને અજ્ઞાન ભાવશે વિશેષ મે સામાન્ય સ્વભાવ તો અકર્તા સુરક્ષિત હૈ તિનો કાર ઓ અકર્તા કો વિશેષ મે જબ કર્તૃત્વ બુદ્ધિ હોતી હૈ તો ઓ વિશેષ સામાન્ય કો છૂટતા હી નહીં એસે અકર્તા સુરક્ષિત હૈ મગર મેં અકર્તા ગાયક ગાતા હું ભૂલ જાતા ઓર ઉસકી અજ્ઞાન મે ભી કર્તા બને તો કોણ સા ભાવ કો કર્તા બને પર્યાય દ્રષ્ટિ સે અજ્ઞાન સે ઓર માત્ર વિશેષ મે સામાન્ય મે નહીં तो द्रव्य कर्म का कर्ता बन सकता नहीं है और लोक कर्म शरीर आदि का कर्ता बन सकता नहीं है। भले अज्ञानी हो तो एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कर्ता बन सकता भले अभिमान करे करने का अभिमान करे उसकी इतनी मर्यादा पर्याय दृष्टि से है मगर पर अभिमान करते होते छते भी होने पर भी पर का तो कर्ता दिन काल में आत्मा बन सकता नहीं। इतनी तो अज्ञान में मर्यादा है। इधर लिया ने कि मैं कर्ता ने क्रोता जी मेरा कर्म इतनी मर्यादा है अज्ञान भाव में જળ કર્મ કા કરે અને એ હાથ હલાવે ઓર રોટી કા ટુકડા કરે ઓર ઓ ઇધર લાવે ઓ અજ્ઞાની ભી કર સકતા નહીં હૈ ભૂંજા હુઆ પાપડ उसका दो टुकड़ा कर करने की ताकत अज्ञानी में भी नहीं है। अज्ञानी करता बनता है तो उसकी उसका कर्म की मर्यादा कितनी है। उसका जो कार्य होता है परिणाम में तो परिणाम को ही करता है मगर अपना क्षेत्र से बाहर जो जड़ चेतन का परिणाम होता है उसको तो और दिन काल में कर सकता नहीं है। है? आत्मा कमजोर बहुत है उसका तो कमजोरी आ गई टुकड़ा कर सके वीर्यवान है आत्मा तो आत्मा विमान है तो अपने क्रोधादी कार्य को भी करे और आगे जाकर जड़ कार्य कर्म का करे चेतन अचेतन पदार्थ को भी करे नहीं कर सकता है तो वीर्य हीन हो गया ऐसा नहीं है। उसका जो वीर्य की पुरुषार्थ की मर्यादा उसका वीर्य की पुरुषार्थ की मर्यादा जो उदार वीर्य विपरीत वर्य वीर्य हो जावे तो इतनी मर्यादा मात्र है अपना परिणाम को करे। सचमुच तो परिणाम होता है उसका सकाल में मैंने क्या हो गया रे वो भी इसकी इच्छा अनुसार परिणाम को कर सकता नहीं है। सूक्ष्म बात है सब के रचना क्या है इसका नाम? समय प्रिय है और राग की रचना करे वो तो नपुंसक है। मगर इतने मर्यादा है इसकी, अपना दृढ़ क्षेत्र का भाव छोड़कर वर्तपुरुष का कार्य तीन काल में आत्मा अज्ञान भाव ने भी कर सकता। इतनी जुदाई तो द्रव्यों के बीच में अत्यंत दबाव है। मेरु पर्वत जैसी दीवार है जो के प्रत्येक पदार्थ के अंदर सटकारक है। कर्ता कर्म करण सत्प्रदान पारना नदी करण छह परिणामी है, तो दूसरा परिणामी द्रव्य को मैं परिणमा सकूं और तीन काल में हो सकता नहीं है। अपरिणामी भी परिणमन में परिणम सकता हूं नहीं, क्योंकि परिणाम शक्ति में देने वाला नहीं। अरे स्वयं परिणमता है उसको मैं फिर क्या परिणमाऊं? ओ हाँ, इतनी मर्यादा इतनी है अज्ञान में कि अपना राजा जी को करता है माने उसका लोग भोगता है, बस इतने अज्ञान भाव में मर्यादा है। इसके मर्यादा से पार अज्ञानी पर पदार्थ का कर्ता तीन काल में हो सकता नहीं है। इसलिए इसमें इतना ही लिया है, अज्ञान से करे तो कितना करे कि अपना शुभ अशुभ भाव को करे, इतनी मर्यादा है। जड़ कर्म को करे नो कर्म को करे वो तो बात अज्ञान भाव में नहीं है। अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोध आदि में प्रवर्तमान निशात्मा के क्रोधादि की प्रवृत्ति परिणाम को निमित्त मात्र करके देखो नया कर्म बनता है, उसमें अज्ञानी का जो क्रोधादि भाव है वो नया कर्म बनता है, उसमें निमित्त मात्र होता है। निमित्त का अर्थ ही और करता है। निमित्त का अर्थ अकर्ता ने उपादान का कर्ता अर्थ करता है। कर्ता होता है उसका नाम उपादान है और उपादान की साध्य संयोग है। उपादान की पर्याय नहीं करे उसका नाम निमित्त है। तो प्रवृत्ति परिणाम को निमित्त मात्र करके विकारी भाव का निमित्त मात्र करके स्वयं अपने भाव से ही परिणत होता हुआ पौरकलिक कर्म इकट्ठा होता है। कितना साफ लिखा है, स्वयं भले अज्ञानी का राग वहां निमित्त हो तो भी उसका राग का कारण से वो कर्म बंधन होता नहीं है। उसको करने वाला नहीं है, मगर वो राग नया कर्म बंधन में अनुकूल निमित्त होता है। उसकी कार्मण वर्गणा में से ज्ञानावरण आदि आठ प्रकार की कर्म की प्रकृति का पद का सकार आता है। वहां जीव परिणमता परिणमता उसका राग रूप परिणाम होता है तो निमित्त मात्र बनता है। कोई किसी का करता अर्था नहीं है, निमित करता कहा जाता है। निमित करता कहा जाता है, निमित मात्र करके स्वयं स्वयं પણ કર્મ વર્ગના મિલસે જો કર્મ બનતા હૈ ઓ સ્વયં પરિણામી સ્વભાવ હૈ ઉસકો આત્મા પરમાતા નહીં હૈ આત્મા કી શક્તિઓ તો તીર્થંકર કર્મ કી પ્રકૃતિ બાંધ દેવે ને પરિણામ તક હોતા હૈ પરિણામ કા વીર્ય પરિણામ મેં હૈ પરિણામ કા વીર્ય પરિણામ કા ક્ષેત્ર છોડકર दूसरे के परिणाम के क्षेत्र में जावे वीर्य जिन काल में है ही नहीं। पर्याय का वीर्य पर्याय में है उसकी मर्यादा
बाहर क्षेत्र में जाता नहीं
तो निमित्त मात्र करके स्वयं अपने भाव से ही જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ વેદની મોરની આયુના મુદ્ર અંતરાય ઉત્તર કર્મ કી પ્રકૃતિ 148 હૈ ઓ સ્વયં ઉસકે કારણ સે શ્રાદ્ધ કે કારણ સે નહીં ઉસકે કારણ સે ઉસકી યોગ્યતા સે ઓ સ્વયં अपने भाव से ही परिणत होता हुआ मौत का लिखकर इकट्ठा होता है। कर्म का बंध होता है, द्रव्य कर्म का बंध, भाव बंध इधर होता है, द्रव्य बंध बाहर में होता है, आत्मा का क्षेत्र में बंध नहीं होता है। द्रव्य कर्म का बंध जड़ कर्म में होता है, भाव मन अज्ञानी जीव की एक समय के पर्याय में होता है। भाव बंद होता है तब वो भाव बंद विशेष में होता है, वही समय सामान्य तत्व मुक्त है। समय की पर्याय में भाव बंध होता है, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा
नहीं है।
भाव बंध एक समय की पर्याय में होने पर भी विशेष में भाव बंध हुआ है, सामान्य तत्व तो ही समय भाव बंध से मुक्त ही आई। इससे बार बार भाव बंध का ज्ञान जब आवे तब भी वो मुक्त को आगे रखकर लक्ष्य रखकर ख्याल में रखे तो वो भाव बंध छूट जाता है। थोड़ी देर के लिए भले हो,
मैं तो मुक्त हूं।
मुक्त भी है અને ભાવ બંધ હોતા ભી હૈ ઓ જૈન દર્શન કી વિશેષતા હૈ। જૈન દર્શન કી વિશેષતા ક્યા હૈ? અપને કો દો દિન હો ચલાયા થા, સામાન્ય અપેક્ષાએ જ્ઞાન ભાવ જ્ઞાન સ્વભાવે અવર્જિત હોતે હોને પર ભી वो विशेष अपेक्षा में भी
ये और गायक का भेद ज्ञान न होने के कारण से
अपने अज्ञान से राग को मेरा मानकर वो करता होता है। वो जरूरी चीज है,
भले भाव पर होता है स्वीकार करना कि जहां तक मेरा मुक्त स्वभाव का अवलंबन न लू मैं सामान्य का अवलंबन न लू नहीं आज तक तो पर्याय में भाव मन होता है उसका बड़ा कुर्ता दुख भी वेदन में आता है। ऐसे होने पर भी इसको मैं देखता हूं तो भाव मन है मगर जरा इस ओर देखता हूं तो वही समय में मुक्त हूं मुक्त हूं ऐसा दिखाई देता है। जब वो में भावबंद है पर्याय में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से राज मेरा कर्म ने मैं करता ऐसा भावबंद का ज्ञान करने के बाद स्वीकार करने के बाद जानने के बाद इतना जानना ही मेरा स्वभाव नहीं है इतना ही जानने में रुक जाऊं ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है ये परखे बंद दिखता है मगर ये साइड में जब देखता हूं मैं सामान्य परखा को अभी मैं मुक्त हूं जब विशेष में बंद है तब सामान्य मुक्त है ऐसे सामान्य परखा मुक्त स्वभाव का जब श्रद्धा ज्ञान में लेता है तो वो भाव बंद छूट जाता है पर्याय में भाव मोक्ष हो जाता है दृष्टि मुक्त सम्य दर्शन हुआ भाव मोक्ष हो गया दृष्टि की अपेक्षा से एक पर्याय का मोक्ष होता है एक पर्याय का पूर्ण मोक्ष हो जाता है। श्रद्धा के लिए सूत्र का मुक्त हो जाती है उसमें दो विभाग भी है चारित्र में है थोड़ा विभाग वो तो मुक्त हो जाता है क्षय समय दर्शन हो जाता है। भाव बंद को स्वीकार करना ज्ञानादि काम से मेरा मुक्त स्वभाव में हूं श्रद्धा में यही नहीं और ऐसे सुधात्मा का उपदेश भी मिला नहीं उसको वो भी क्या करे उसके लिए होना मगर जब ज्ञानी का जन्म होता है तो ज्ञानी का जभी जन्म होता है तभी तभी वो सामान्य स्वभाव सामान्य परखा जगत को बताता है विशेष का तो अनुभव सबको है मगर सामान्य स्वभाव उसने देखा और अपने आप देखने की शक्ति भी नहीं है इसलिए उसको ज्ञानी जब मिलता है सत्समागम सत्पुरुष मिलता है और देखना लगती आती है कि भैया तू सर्वथा बंद नहीं हुआ है ये क्या सुन रहा है मैं तो बंदा हुआ हूं मैं तो कर्म से बंदा हुआ हूं देह से बंदा हुआ हूं भाव बंद का ही उसको मालूम नहीं था समझे तो भाई तू सर्वथा बंदा हुआ नहीं है इसका क्या सर्वथा बंदा हुआ नहीं है इसका क्या कथनचित बंद है कथनचित बंद है अर्थात व्यवहार नहीं से भाव बंद है भाव बंध भी निश्चय से नहीं है। जो भाव बंध निश्चय से हो गया होता तो कभी कोई जीव की मुक्ति हो सके नहीं। अशुद्ध निश्चय नहीं से भाव बंध है। अशुद्ध निश्चय नहीं कहो, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहो, पर्यार्थिक नहीं कहो, व्यवहार नहीं कहो, व्यवहार नहीं से भाव बंध है। तब प्रतिपक्ष एक निश्चय नहीं भी है। हमें तो कर्म का उदय कहाँ है?
आत्मा में तो ज्ञान का उदय होता है, क्योंकि आत्मा तो ज्ञानमय है।
आत्मा तो ज्ञानमय है, तो
ज्ञान का उत्पाद अर्थात उदय होता है। सूर्य में प्रकाश का उदय होता है,
सूर्य में या अंधकार का उदय होता है।
वो कर्म का उदय
कर्म की सत्ता में रहता है।
आत्मा का देह गुण पर्याय में भी हो सकता नहीं है। वेद ज्ञान के बाद ज्ञान ने आत्मा को जान लिया। जब कर्म का उदय आता है तो ज्ञान का ये बन जाता है, तो वो सलाम करके चले जाता है। सलाम करके
वो नहीं कहता है कि तेरे पूर्व पर्याय में
ऐसा कर्म मंदा था, मैं उदय में आया तो हमारी साथ
एकता पूर्ति करनी पड़ेगी।
ऐसा कर्म कहता नहीं है, कर्म सलाम भर के चले जाता है, यानी निर्जला हो जाती है। नहीं तो कोई छुटे ही नहीं। अज्ञान से कर्म बंधा, ज्ञान प्रकट हो गया,
पूर्ण परमात्मा तो हुआ नहीं,
साधक है। कर्म का उदय तो आता ही है, आने तो
आत्मा को क्या नुकसान है? आत्मा को कोई नुकसान
नहीं। इसे चले जाए हम और पवन में झाड़ का पत्ता ही ले तो अपने को क्या नुकसान? कोई नुकसान होता है? ऐसे धर्म कर्म की सत्ता भिन्न है, मैं ही सत्ता भिन्न है। जानने में आता है कि कर्म का उदय आया।
आत्मा को जानते जानते
और आगम से जान लिया कि कर्म का उदय साधक को आता है,
मगर उसका लक्ष्य उसके पर है। नहीं लक्ष्य फिरता नहीं, निर्लक्ष तो गायब पर है,
तो उसकी निर्जरा और कर्म नहीं बलात्कार करते कि तेरे भूल किया
मेरा बंधुआ,
तो मैं उदय में आया तो मेरा लक्ष्य करना ही पड़ेगा, निमित्त का अर्थ ही करना ही पड़ेगा।
ऐसे कर्म जड़ करते
इतना तो उदार है, जड़ कर्म उदार है।
तो आत्मा की उदारता की बात
ऐसा वापस करता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त जो उसका निमित्त है, यानी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त कारण अज्ञान है और अज्ञान का निमित्त कारण चुना कर्म का उदय है। मगर
कर्म का, कर्म का नाम निमित्त कहाँ तक है? जब नैमित्तिक अवस्था अज्ञान प्रकट होता है तहां तक, अज्ञान छोड़ गया यानी ज्ञान प्रकट हो गया तो कर्म का नाम निमित्त में रहा, कर्म का नाम क्रिय बन गया, नाम ही बदल गया, मूल ओरिजिनल के आ गया, ओरिजिनल यही था, पहले से यही था। अगर जहां तक को आत्मा का स्वभाव से च्युत होकर ज्ञान प्राप्त प्रणता था तो निमित्त पर्याय अने कर्म का नाम निमित्त, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध कहां तक है? आत्मा का भान नहीं है तहां तक। जहां आत्मा का भान हो गया तो ही आठ कर्म के साथ ज्ञात आज्ञे का व्यवहार हो जाता है, तो भी व्यवहार है, निश्चय तो है
नहीं, निश्चय तो इधर है।
आत्मा ही ज्ञान आत्मा ही ये इतना ही भेद छूट जावे, अनुभव होने के बाद वो व्यवहार यही कहा जाता है निमित्त मिट गया। निमित्त का नाम ही है नीवा, और खेता का राज सार्थक को होता है वो बात गौ है, वो बात गौ कर दो। अभी ये उगलोत्तर सीतर ये विद्योत्तर गाथा लेना है।
उसका बठाला
उठाने का ऊपर का गाथा का ऊपर का
क्या गाथा में
आने वाला है इस प्रश्न, यह अब प्रश्न करता है शिष्य जिज्ञासु जीव बंधन तो है मगर छूटने का जिसका अभिलाषा हो गई,
छूटना है मेरे को,
बंधना नहीं है, स्वाधीन होना है।
अब प्रश्न करता है कि यह आत्मा
किस विधि से आश्रमों से निवृत्त होता है?
इसका अर्थ यह है
कि शिष्य ने इतना तो कबूल कर लिया है कि विचार दौरत कषाय योग नाम का जो भाव आश्रम है उसकी निवृत्ति तो होती ही है क्योंकि वो विभाव है, मगर वो विभाव की निवृत्ति कैसे हो वो मैं नहीं जानता हूं। इतना तो टीला पड़ गया है कि मिथ्या तो नाश होने वाला है, कायम रहने वाला, जैसे भगवान आत्मा तीनों काल शाश्वत रहता है ऐसे मिथ्यात्व का परिणाम शाश्वत एक समय की आयुष वाला है, क्षण के लिए है। ऐसे मिथ्यात्व नाम का जो आश्रव है, आश्रव को स्वीकार किया पर्याय में आश्रव है पर्याय में, और आश्रव निवृत्त हो सकता है ऐसा भी स्वीकार किया, मगर उसके निवृत्ति का मार्ग मैं नहीं जानता, उसके त्याग की विधि मैं जानता
नहीं हूं। वो तो किस नीति से आश्रयों से निवृत्त होता है, अर्थात दुख की निवृत्ति का उपाय क्या है?
दुख तो है
और दुख नहीं चाहिए, ऐसा अव्यक्त अंदर में परिणाम तो सबको होता है। तो मालूम पड़ता है कि दुख आत्मा का स्वभाव नहीं है, सब अव्यक्त तो अंदर में दुख का निषेध करता ही है। क्योंकि दुख आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए सब प्राणी मात्र को निषेध आ रहा है। क्या कहा कि दुख है आत्मा का स्वभाव नहीं है, दैविक स्वभाव तो नहीं पर पर्याय स्वभाव भी नहीं है।
तो अंदर में से सब जीव सुख को कहते हैं,
दुख को कहते हैं, जो सुख के तेन दुख के नीचे है, क्योंकि मूल स्वभाव आत्मा का सुखी होना, इतना उसका सवाल है। तो सबको अव्यक्त उसको निषेध तो आता है, मगर दुख की निवृत्ति कैसे हो ओ उपाय क्या नहीं जानता। दे उपाय की बात बोलते भी थी,
दुख की निवृत्ति कैसे हो उसके उत्तर प्रार्थना कहते हैं।
मैं गाथा बोला
तो गाथा
अब देखो, क्या कहा अभी तो विचार में लेता है, बाद में अनुभव करेगा। ये जो जिसके अंदर में विचार में आ जाएगा और निर्णय आ जाएगा, वो अनुभव जरूर करेगा करेगा। हाँ, एक काल में अभी प्रत्यक्षण कल नहीं, अजीत प्रसाद जी अभी ही ज्ञानी को विचार करने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी विचार करते हैं या अर्थात जिसको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है मगर विचार में लेता है, निश्चय से विचार में क्या लेता है। देखो समय सार शास्त्र है इसलिए खलास, जैसे दर्पण सामने आ रहे स्वच्छ दर्पण, अरे मुंह नहीं जी के ऐसे बने नहीं, ऐसे समय सार शास्त्र हाथ में आ रहे और रुचि पूर्वक अध्ययन करे, अरे आत्मा का दर्शन न हो ऐसे बने नहीं। निश्चय से मैं एक हूँ वहां से शुरुआत, निश्चय से परमार्थ से मैं यानी जीव आत्मा मैं एक हूँ। जब मैं एक हूँ तब उसकी नजर सामाजिक पर आ जाती है, अरे मैं अनेक हूँ तो उसकी विचार श्रृंखला पर्याय पर जाती है। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, शुद्ध होना नहीं शुद्ध हूँ इतना तो विचार कोटि में आ गया अनुभव के पहले। अद्भुत शास्त्र है, कथनचित में अशुद्ध हूं, अरे भैया अभी क्यों यो याद करता है, धक्का दिए तू अशुद्ध की सिद्धि करनी है अभी, अशुद्ध का तो तेरे को वेदन अनादि काल का कर लिया अभी भी तू याद करता है। कोई चक्रवर्ती हो राजा, उसने जिमने का कहा मेहमान को, जिमने आया तो चक्रवर्ती का भोजन तो कैसा बढ़िया से बढ़िया होता है कि वो थाल देखा तो उसमें ज्वार की रोटी नहीं है भैया, अरे भाई ज्वार की रोटी को युवराज क्यों करता है, वो तो 300 दिन तेरे घर को मिलती है। तो मैं शुद्ध हूँ ऐसे जब विचार करते तब तो मैं कथन की पर्याय से अशुद्ध हूँ वो विचार आता ही नहीं है। मैं शुद्ध हूँ अभी विचार कोटि में शुद्ध लिया है, तो जिसकी विचार कोटि में शुद्ध आया है उसको अनुभव में भी शुद्ध आने वाला है। कथन की तो शुद्ध है भाई, कथन की रहने दे, दृष्टि का विषय हाथ में नहीं आएगा, प्रमाण ज्ञान को याद मत कर अभी, अभी प्रमाण ज्ञान में से नहीं से काटने की बात है। मैं एक हूं अपूर्व शास्त्र है, क्या इसकी
का उपकार किया वाणी में आ सके नहीं जिन वाणी माता दो निमित्त होता है पंचम काल में अंतरम निमित्त जिसको मोहादि क्षय हो गया सार्थक सत्पुरुष अंतरम निमित्त नजदीक का बहिरंग निमित्त जिन वाणी है और यह देव अभी इधर पंचम काल में नहीं है इसलिए कुंकुदाचार्य भगवान ने नियम सार में दो निमित्त रखा तो मैं ये कुशुद हूँ ममता रहित हूँ ममता रहित होना वो मेरा स्वभाव नहीं है वो अन्य का स्वभाव है क्या ममता रहित होना वो मेरा स्वभाव नहीं है वो अन्य का पर्याय का स्वभाव है मैं तो निर्ममत हूँ ममता रहित हूँ एक हूँ शुद्ध हूँ निर्ममत हूँ आगे ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण कभी अभी ये ज्ञान दर्शन की पर्याय में अपूर्णता है इसका क्या होगा छोड़ दे बात पर्याय का लक्ष्य छोड़ दे पर्याय को याद मत कर पर्याय का लक्ष्य और याद कर करके चार गति में दुख आया तेरे को अभी तो भूल जा थोड़ी देर के लिए मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ होगा नहीं केवल ज्ञान होगा इसी बात नहीं है मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूँ ये द्रव्य स्वभाव सामान्य स्वभाव जो आश्रय भूत तत्व है भूतार स्वभाव है जिसका अवलंबन से सम्यक दर्शन होता है वो सम्यक दर्शन का विषय की बात चलती है ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ उस स्वभाव में रहता हुआ ऐसा एक शुद्ध निर्ममत्व ने ज्ञान दर्शन से पूर्ण मेरा त्रिकाल सामान्य एक रूप जो स्वभाव है अभी विद्यमान है अभी लक्ष्य में आता है अभी विचार में आता है तो ऐसा है ऐसा जैसा है ऐसा विचार में आ गया अनुभव से पहले इतनी तो मानसिक ज्ञान की तागाद है और जैसा विचार में आया बाद में वैसा ही अनुभव में आने वाला है फिर पार होने वाला कि विचार में कुछ आया अनुभव में कुछ आया तो उसका विचार झूठा है सुख सुख बात है आत्मा का दर्शन कैसे होवे दर्शन का विषय क्या है एक उस स्वभाव में इसे मेरे स्वभाव में रहता हुआ टिकता हुआ दिन देता हुआ लक्ष्य करता हुआ आश्रय करता हुआ उसमें लीन होता हुआ मैं इन क्रोधाधिक सर्वार्थों को क्षय को प्राप्त करता हूँ क्षय की घड़ी है उपशम क्षम नहीं ऐसा मेरा जो स्वभाव है उसमें लीन रहता हुआ और सब आश्रयों की निवृत्ति हो जाएगी निवृत्ति का प्रश्न का उत्तर है कि दुख की निवृत्ति का उपाय क्या है कि अपना जो शुद्ध आत्मा सामान्य एक रूप स्वभाव है उसमें जब आत्मा लीन होता है यानी एकाग्र होता है यानी पर्याय द्रव्य के साथ एकत्र करता है अपना शुद्ध आत्मा का पर्याय मेरा जब ध्यान करता है पर्याय जब मेरा ध्यान करता है तो पर्याय में से आश्रम की निवृत्ति हो जाती है पर्याय मेरा ध्यान करे तो करो मैं किसका ध्यान करूं। ये सुगंधी की तीखी बात मैं आत्मा का ध्यान करता हूं ऐसा नहीं, पर्याय मेरा ध्यान करता है। तो पर्याय जब मेरा ध्यान करेगा तो आसुरों की निवृत्ति हो जाएगी पर्याय में। मैं तो आसुरों से तीनों का लूटा हूं। जो पर्याय में आसुर हुआ वो पर्याय का व्यय होता है, तो वो पर्याय के अंदर संवर जरा प्रकट होता है। वो संवर की पर्याय कब होती है? जब पर्याय ये आत्माकार स्वभाव में जब लक्ष्य करके लीन हो जाएगा, पर्याय अंतर लीन, तब वो पर्याय शून्य होती है, आसुर की निवृत्ति होती है, दुख की निवृत्ति होती है, उसको क्षय प्राप्त करता हूँ। ठीक है, दो मिनट बाकी। मैं या प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्ह मात्र ज्योति आत्मा। भगवान आत्मा का विशेषण लगाते लगाते शब्द कम पड़ता है लिखने के लिए शब्द। मैं यह प्रत्यक्ष आत्मा तीनों काल प्रत्यक्ष है, परोक्ष है ही नहीं, इसलिए अपना ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष हो जाता है। जो परोक्ष उसका स्वभाव है तो पर्याय में दर्शन नहीं हो रहे, बोले आत्मदृढ़ स्वभाव, दृढ़ का विशेषण है। प्रत्यक्ष और परोक्ष एक पर्याय का विशेषण है, और इधर दृढ़ सामान्य का विशेषण प्रत्यक्ष है। मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान आदि परोक्षम अदारे, वो बात पर्याय का विशेषण नहीं है, उसको पर्याय याद आती है कि पर्याय तो अभी प्रत्यक्ष नहीं है। ये क्या लिखता है? इतनी पर्याय का परिचय इतना किया है, इतना परिचय किया है अनादिकाल से, द्रव्य स्वभाव की बात आते हैं जब बात, तब ही उसका विचार में पर्याय देखते हैं। अरे पर्याय को देखने का थोड़ी देर के लिए बंद कर दे तो द्रव्य स्वभाव दिखने के में आ जाएगा। कल क्या था? मैं यह प्रत्यक्ष अखंड, अखंड खंड नहीं, प्रत्यक्ष शब्द परोक्ष का निषेध करने वाला है। प्रत्यक्ष जो शब्द आया वो परोक्ष का निषेध करता है, और अखंड खंड का निषेध करता है। खंड नहीं हूं मैं, अखंड हूं, परोक्ष में नहीं हूं मैं, प्रत्यक्ष हूं अनंत। अनंत में हर सामर्थ, अनंत चिन्ह मात्र बेहद ज्ञान और दर्शन, ऐसा मेरा स्वभाव चिन्ह मात्र अनंत 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 भाव से अनंत बेहद सामर्थ मेरा में। अनंत चिन्ह मात्र ज्योति आत्मा, तो ज्योति ज्ञान प्रकाश का पूज है, उसमें अज्ञान अंधकार राग का अंधकार उसमें है नहीं। अनादि अनंत पर्याय सादी शांत है, मैं अनादि अनंत हूं। नित्य उदय बार नित्य प्रकट 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 प्रत्यक्ष विशेषण दिया, बाद में प्रकट हूं। पर्याय प्रकट होती है, अरे मैं तो हमेशा प्रकट ही हूं। जो प्रकट होती है और मैं नहीं हूं, प्रकट है वो मैं हूं। पर्याय
वाली है। मैं तो तिरोकाल प्रकट हूं। प्रकट नित्य उदय यानी नित्य हमेशा प्रकट हूं। विज्ञान का स्वभाव भावत्व के कारण एक हूं। एक कई बार चलती है, टाइम हो गया, कल फिर से।